مسیح میں عزیز بہنوں، بھائیوں، بچوں، بزرگوں، عزیزوں، بطور کلیسیا یہ سال جب ہم نے شروع کیا تو ہم نے ایک تھیم مقرر کیا اس سال کے لیے، کیونکہ ہماری کلیسیا میں یہ چند سالوں سے روایت ہے کہ ہم ہر ایک سال کو ایک عنوان دیتے ہیں، اور اس سال کے لیے ہمارا تھیم ہے نوئنگ گاڈ، خدا کو جاننا. اور یوحنا کی انجیل کا باب نمبر 17 اور پہلی 3 آیات کہ جن کی تلاوت کی گئی ان میں خداوند یسوع مسیح کے الفاظ ہیں کہ ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ خدا واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جانا جائے. ٹو نو گاڈ اینڈ جیزس کرائسٹ از دا ایٹرنل لائف. خدا کو، یسوع مسیح کو جاننا زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے. تو یہ ضروری ہے ہمارے لیے خداوند یسوع کو جاننا، کیونکہ ہم کہتے ہیں، ہم ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع مسیح ہمارا خدا ہے، وہ ہماری عبادتوں اور پرستش کا حقدار ہے. تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اسے بھی جانیں. اور یہ ایک موقع ہے ان لوگوں کے لیے بھی کہ جو ہمارے خداوند یسوع مسیح کو نہیں جانتے یا تھوڑا سا جانتے ہیں، تو وہ پورے طور پر جان لیں گے اسے، یا کسی کے ذہن میں اس کے بارے میں کچھ غلط فہمی ہے تو وہ غلط فہمیاں بھی جو لوگوں کے ذہنوں میں ہیں یسوع کی ذات کے متعلق، وہ بھی دور ہو سکتی ہیں. سو ہم آج سے یہ سیکھنا شروع کریں گے یسوع کون ہے، Who is Jesus. اس بارے میں ایک بہت بڑی بات جو ساری دنیا، چاہے لوگ یسوع مسیح کو مانے، اس پر ایمان رکھیں یا نہ رکھیں، ایک بات ضرور تسلیم کرتے ہیں کہ یسوع وہ ہستی ہے کہ جو انسانی تاریخ کا مرکز بن گئی ہے. ہی از دا سینٹرل فگر آف ہیومن ہسٹری. انسانی تاریخ کی مرکزی شخصیت یسوع ہے، وہ ہستی کہ جس نے کائنات بنائی، وہ شخصیت کہ جس نے تاریخ تخلیق کی، وہ ہستی کہ جس نے ابتدا کی، وہ ہستی جو ابتدا سے بھی پہلے موجود ہے، اور جس نے ابتدا میں سب کچھ بنایا، جس کے وسیلے سے سب کچھ بنا اور جس کے واسطے سب کچھ بنا، وہ تاریخ کے مرکز میں کھڑی ہو جاتی ہے وہ ہستی، اور پھر تاریخ اس کے گرد گھومتی ہے. تاریخ کا خالق تاریخ میں کھڑا ہو جاتا ہے اور تاریخ دو حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے، ایک طرف کو قبل مسیح یا بیفور کرائسٹ کہہ دیتے ہیں، یعنی وہ وقت انسانی تاریخ کا وہ حصہ، وہ پیریڈ، وہ زمانہ جو اس کے تاریخ میں کھڑے ہونے، موجود ہونے سے پہلے کا ہے، اور پھر وہ زمانہ کہ جب وہ تاریخ میں اتر آتا ہے، جب وہ انسانی تاریخ میں موجود ہو جاتا ہے، اس کے بعد کا زمانہ، اسے اے ڈی یا اینو ڈومینی کہتے ہیں، جس کا انگریزی میں مطلب ہے ان دا ایئر آف دا لارڈ. یہ لاطینی زبان کے الفاظ ہیں، اینو ڈومینی، ان دا ایئر آف دا لارڈ، اور اردو میں ہے خداوند کا سال. آج جو تاریخ ہے 5 جون 2020، اسے جب لکھا جاتا ہے تو اے ڈی اس کے ساتھ لکھا جاتا ہے، جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ خداوند کے تاریخ میں اترنے، تاریخ میں قدم رکھنے کے سال سے اب تک 2020 برس گزر چکے ہیں. چاہے دنیا اس پر ایمان رکھے یا نہ رکھے، جب تاریخ لکھتے ہیں تو زمانے کو تقسیم کر دیتے ہیں، اور یہ مان لیتے ہیں کہ یہ زمانہ यसु मसीह के तारीख में जाहिर होने, जिस्म लेकर उतरने, उसके इस तारीख में शामिल होने के साल के बाद आज 2020वां साल है। यसु वो है जो इंसानी तारीख की मरकजी शख्सियत है, इज द सेंट्रल फिगर ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री। और यसु मसीह हमारे नजदीक सब कुछ है, वो हमारा खुदा है, वो हमारा मुनज्जी है, वो हमारा बादशाह है। लेकिन हम कुछ वक्त के लिए गौर करेंगे कि लोग यसु के बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि यसु मसीह को भी इस बात में दिलचस्पी थी। उसने अपने शागिर्दों से पूछा था कैसरिया फिलिपी के इलाके में, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। ये बड़ी अहम बात है, खुदावंद यसु मसीह तारीख में आया, लेकिन उसके बारे में लोगों के क्या नजरियात हैं। हम देखेंगे गैर मसीहियों के मुताबिक यसु कौन है, अकॉर्डिंग टू नॉन क्रिश्चियंस हु इज जीसस। कुछ लोग यह यकीन रखते हैं कि यसु कोई हकीकी शख्सियत नहीं, बल्कि वो एक इल्यूजन है, एक वहम है, लोगों के जहन की इख्तरा है। ही इज द क्रिएशन ऑफ सम माइंड्स। वो उसकी हकीकी शख्सियत का इनकार करते हैं, कहते हैं वो है नहीं, वो एक फर्जी किरदार है, जैसे कहानियों में किरदार होते हैं जिनकी असलियत कुछ नहीं होती। ये ख्याल है लोगों का, ये नजरिया है। लेकिन जहां लोग ये कहते हैं कुछ कि वो एक हकीकी शख्सियत नहीं, वो कभी था ही नहीं, ये तो कहानियां बनाई हुई हैं उसके बारे में, उसका कभी वजूद नहीं था, वहीं जोसिफस और टेसिटस, ये मसीही लोग नहीं हैं। इन्होंने अपनी किताबों में लिखा है उस जमाने की तारीख लिखते हुए कि यसु नाम का एक शख्स था जो बड़े मौजजे करता था, जो बड़ी तालीम देता था, लोग उसके पीछे होते थे, और फिर उसे सलीब भी दिया गया, और फिर उसके शागिर्दों ने यह अकीदा और ईमान रखा कि वो जिंदा है, क्योंकि वो ये तो नहीं मानते थे कि वाकई वो जिंदा हुआ, क्योंकि वो मसीही नहीं थे, लेकिन वो अपनी किताबों में यह जरूर लिखते हैं कि यह शख्स मौजूद था, और इसके बारे में लोगों का ये ईमान था, और इसे रोमी हुकूमत ने सलीब भी चढ़ाया। तो जो लोग कहते हैं कि यसु एक ख्वाब और ख्याल है, वहम है, इल्यूजन है, या एक मिथिकल करैक्टर है, या कोई एक फर्जी ख्याली किरदार है, गैर मसीही लोगों ने ये अपनी किताबों में ये लिखकर ये गवाही, ये शहादत, ये एविडेंस दे दिया है कि वो गलत है, उनकी सोच गलत है। यसु वाकई तारीख में एक हकीकी, अ ट्रू हिस्टोरिकल पर्सन है, वो हकीकी तारीखी शख्सियत है कि जो तारीख में मौजूद था, जैसे मैं और आप इस वक्त मौजूद हैं इस दुनिया में। वैसे ही एक वक्त था 2000 साल पहले यसु इस धरती पे मौजूद, चलता फिरता, तालीम देता था, मौजजे करता था, लोग उसके पीछे चलते थे, और फिर उसके साथ जो कुछ सलूक हुआ वो उन तारीख नवीसों ने, हिस्टोरियंस ने उसे लिख रखा है। फिर कई लोग जो यसु पर ईमान नहीं रखते, गैर मसीही हैं, वो ये समझते थे, और बाइबल में इसका जिक्र है कि यहूदी लोग जो मसीह के शख्सियत के खिलाफ थे, मसीह के की तालीम के खिलाफ थे, मसीह से मुत्तफिक नहीं थे, यसु को उन्होंने कबूल नहीं किया था, वो कहते थे ये बेखुद है, इज आउट ऑफ हिज माइंड, इसका जहन ठीक नहीं है, वो उसकी सोच और उसके ख्याल और उसके थॉट्स, उसकी थिंकिंग, उसके माइंड पे सवाल उठाते थे, कहते थे कि ये दीवाना है, ही इज अ ल्यूनेटिक, ही इज आउट ऑफ हिज माइंड। और फिर कुछ लोग कहते थे कि इसमें बुरी रूह है, और ये भी यसु मसीह के मुखालिफ लोग थे, और यसु की मौजूदगी में कोई बदरू वहां कायम ना रह सकती थी, यसु झिड़कता और बदरूहें निकल जाती। तो उन्होंने कहा ये तो लोगों में से बदरूहें निकाल रहा है, लोगों को चंगा कर रहा है, उनको इबलीस के शिकंजों से आजाद कर रहा है, تو اس کو بدنام کرتے ہیں اور انہوں نے مشہور کر دیا کہ یہ تو بدروحوں کے سردار کی مدد سے بدروحیں نکالتا ہے. اور لوگ اس پہ کفر کے فتوے بھی لگاتے تھے کہ یہ کفر بکتا ہے, ہی از بلاسفیمر, کیونکہ یسوع جب تعلیم دیتا تھا وہ صاحب اختیار کی طرح, کیونکہ وہ بدن میں کامل خدا تھا. جب وہ گناہ معاف کرتا, جب وہ مردے زندہ کرتا, جب وہ لنگڑوں کو چلاتا اور جنم کے اندھوں کو اچھا کر دیتا, جب وہ کوڑیوں کو پاک کرتا, جب وہ روٹی سے بھوکوں کو سیر کر دیتا, تو اس کے معجزے دیکھ کر لوگ اس کے پیچھے پیچھے چلتے تھے اور اس کے مخالفین اس پر الزام لگاتے تھے کہ یہ مخالف قوت ہے, یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے, یہ بدروحوں کے سردار کی مدد سے یہ کام کرتا ہے. اور وہ یسوع سے سوال کرتے کہ تو ہمیں بتا دے کہ تو کون ہے, تو خدا کا ممسوح, خدا کا بیٹا, وہ ہستی ہے کہ جسے اس دنیا میں آنا تھا. تو یسوع نے جواب دیا کہ ہاں میں ہوں, میں وہی ہوں جو خدا کا بیٹا ہے اور جو الہی شخصیت ہے. تو انہوں نے کہا یہ کفر بکتا ہے, ہی از بلاسفیمر, اس پہ کفر کا فتویٰ لگا. تو میرے بھائیوں اور بہنوں اور عزیزوں, اگر کوئی آپ پہ آپ کے ایمان کی وجہ سے, آپ کے ایمان کی سچائی کی وجہ سے, آپ کے ایمان کی گواہی کی وجہ سے کفر کا فتویٰ لگائے, اگر کوئی آپ کو کافر کہے تو گھبرانا نہیں, پریشان نہیں ہونا, مایوس نہیں ہونا, اسے اعزاز سمجھنا, اسے ایک آنر سمجھنا, اسے ایک عزت سمجھنا, کیونکہ میرے اور آپ کے خداوند پر بھی یہ فتویٰ لگا تھا اور ہم یوں اس کے ساتھ ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں. اسے بھی لوگوں نے سچائی پر قائم رہنے کی وجہ سے, سچ کہنے کی وجہ سے کافر کہا, کفر بکنے والا کہا. اور ہم بھی جب اپنے ایمان کا بیان کرتے ہیں تو لوگ ہمیں بھی کہتے ہیں کہ یہ کافر ہے. گھبرانا نہیں, مایوس نہیں ہونا, پریشان نہیں ہونا, عزت سمجھنا, کیونکہ ہمارے یسوع کو بھی یہ نام دیا گیا تھا. ہم نہیں گھبراتے ایسے برے ناموں سے, جو مرضی کہیں, ہمیں معلوم ہے یسوع کو کافر کہنے والے, اس پر کفر کے فتوے لگانے والے خود غلط تھے, یسوع درست ہے. ہی از دا ٹروتھ, جو کچھ اس نے کہا وہ سچ تھا, سچ ہے اور ہمیشہ سچ رہے گا. ہم بھی, ہمارا ایمان بھی سچا تھا, سچا ہے اور سچا رہے گا, بھلے دنیا اسے کفر مانتی رہے, لیکن ہم جو کچھ ایمان رکھتے اور اس کا بیان کرتے ہیں وہ سچ ہے, ہمیں کفر کے فتووں سے گھبرانا نہیں ہے. جہاں لوگ اس کے بارے میں بری باتیں کہتے وہاں اسے ایک سچا اور نیک استاد بھی کہتے تھے. مخالفین میں سے بھی کچھ لوگ تھے جو کہتے کہ ہم جانتے ہیں تو سچا ہے, ہم جانتے ہیں کہ تو نیک ہے, ہم جانتے ہیں کہ تو سچائی کی تعلیم دیتا ہے, تو بڑی اچھی تعلیم دیتا ہے. لوگ اس پر اعتبار کرتے تھے کہ جو کچھ یسوع کہتا ہے وہ سچ ہے اور یسوع میں کوئی بدی, کوئی خرابی, کوئی ایول نہیں ہے. لوگ اسے ایک سچا اور نیک استاد بھی مانتے تھے, that he is a true and good teacher. بڑی دنیا ہے جو یسوع کو صرف نیک استاد کہتی ہے, اس پر ایمان نہیں رکھتے, پورے طور پر ایمان نہیں رکھتے, بس یہ کہتے ہیں ہی واز اے گڈ ٹیچر. بہت سارے رائٹرز, مصنف آپ نے دیکھے ہوں گے فلموں میں, ڈراماز میں, کئی کتابوں میں, کہانیوں میں, یسوع مسیح کی تعلیم میں سے جملے نکال کر لوگ استعمال کرتے ہیں, لیکن وہ یسوع پر ایمان نہیں رکھتے, اس کے الفاظ استعمال کرتے ہیں, اس کی تعلیم پر عمل کرتے ہیں, اس کی تعلیم کی تعریف کرتے ہیں, لیکن اس پر ایمان نہیں رکھتے کہ وہ حقیقی طور پہ کون ہے. صرف ایک اچھا نیک سچا استاد اسے مانتے ہیں. یہاں تک ماننا پورا ایمان نہیں ہے, یہ کافی نہیں ہے. اگرچہ یسوع ایک سچا اور نیک استاد ہے, सिर्फ इतना सा उसे मानना ये काफी नहीं है। कुछ लोग हैं जो सिर्फ उसे एक नबी मानते हैं, एक नबी, अ प्रॉफिट, वन ऑफ द प्रॉफिट्स। वो कामिल खुदा है और बदन की हालत में जब वो आया तो उसने मुस्तकबिल की बातें कही जो पूरी हुई, और ये सिफ्त नबी की होती है। लोगों ने उसे सिर्फ नबी जाना, लेकिन वो नबी से बढ़ के है। सिर्फ नबी मान लेना काफी नहीं है, सिर्फ एक नबियों की फहरिस्त में उसका नाम शामिल कर देना कि वो इतने नबियों में से एक नबी है, ये भी काफी नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ तो है कि लोग उसे नबी मानते हैं और उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, और कुछ उसे मौजजा गर या मौजजा साज या मिरेकल वर्कर मानते हैं कि उसमें ऐसी कुदरत और ताकत मौजूद थी कि वो मौजजे करता था। हाँ, यीशु मसीह के बारे में जो इंजीली बयानात हमारे पास बाइबल मुकद्दस का हिस्सा हैं, उनमें उसके बहुत सारे मौजजात का जिक्र है। और फिर चौथी इंजील यूहन्ना की मार्फत लिखे गए इंजीली बयान के आखिर में यह लिख दिया गया, वो सारे काम, वो सारे बड़े बड़े काम, वो सारी कुदरत के काम, वो सारे मौजजात और अजायब जो यीशु ने किए, अगर उनको लिख दिया जाता किताबों की सूरत में तो दुनिया में उनको रखने की जगह ना होती, इतने मौजजे उसने किए। तो भी जो लिखे गए हैं वो इसलिए लिखे गए हैं कि तुम जानो कि वो खुदावंद है, वो खुदा का बेटा है, वो इलाही शख्सियत है जो जिस्म में जाहिर हुई। मौजजात की बात करते हैं तो वो ये मानते हैं कि वो बीमारों को शिफा देता, वो अंधों को आंखें देता, वो गूंगों को बोलने की ताकत देता, वो बहरों को सुनने की ताकत देता, वो लंगड़ों को चलने की ताकत देता, वो लुंजों को बदन के अज़ा मुतहर्रक होने के बाद काम काज करने के काबिल बना देता, और कोढ़ियों को वो पाक करता, मुर्दों को जिंदा करता, गैब का इल्म रखता था। क्या खा के आए हो, क्या करने जा रहे हो, ये गैब का इल्म तो सिर्फ खुदा जानता है। लेकिन लोग ये मानते हैं कि यीशु में ये ताकत थी कि वो सब इल्म रखता था, और फिर ये भी मानते हैं कि वो कुछ बना के फूंक मारता था और वो जिंदा चीज बन जाती थी, यानी वो तख्लीक करने का भी काम करता था। ये सारे मौजजात इसके भले लोग मानते हों, उसने किए भी ये सारे, तो भी लोग उसको वो मुकाम नहीं देते कि जो हकीकी तौर पे यीशु का है। गैर मसीही उसे नेक उस्ताद मानते हैं, नबी मानते हैं, मौजजे करने वाला मानते हैं, और कलमतुल्लाह और रूहुल्लाह यानी खुदा का कलाम और खुदा का रूह भी मानते हैं उसे। They believe that Jesus is the word of God and the spirit of God. फिर भी नहीं समझते कि हकीकी तौर पे वो क्या है। बाइबल कहती है इब्तदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था, और जो कुछ भी पैदा हुआ है वो उसी के वसीले से पैदा हुआ है, कुछ भी उसके बगैर पैदा नहीं हुआ, और कलाम मुजस्सम हुआ और इंसानों के दरमियान रहा। उसे खुदा का कलिमा, खुदा का कलाम, द वर्ड ऑफ गॉड और रूहुल्लाह द स्पिरिट ऑफ गॉड भी मानते हैं, और यह भी गैर मसीही लोग मानते हैं कि वो आएगा और हकीकी अमन और सलामती लाएगा, कोई और नहीं आने वाला, यह भी ईमान है गैर मसीहियों का। गैर मसीहियों का यह ईमान है कि यीशु ही आने वाला है, वो ही आएगा, कोई और शख्सियत आकर जमीन पर ये सारी बुराइयां खत्म नहीं करेगी, किसी और में ये ताकत नहीं है, किसी और का ये इख्तियार नहीं है। None other than Jesus has authority to make eternal peace in the universe. They believe in it. मानते हैं वो आएगा, और उसके सिवा कोई नहीं जो ये इख्तियार रखे कि दुनिया में हकीकी अमन और सलामती लाए और सारी दुश्मन कुवतों पर गालिब आ जाए। मानते हैं गैर मसीही, हम तो उसके मुंतजिर हैं, हम तो इंतजार में हैं कि वो आएगा, अदालत करेगा, अपनी बादशाहत को कायम करेगा और अपने लोगों को अपने साथ अबदी बादशाहत का हिस्सा बनाएगा, और वो जो उसके मुखालिफ हैं, जो उस पर ईमान नहीं रखते, वो उन्हें सजा देगा, क्योंकि वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आने वाला है। लेकिन गैर मसीही चाहे कुछ भी मानते, गैर मसीही चाहे कुछ भी यकीन रखते हों यस्सु के बारे में, हमें उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। हमारा अकीदा हमारा है जो इस कलाम मुकद्दस पर मबनी है। हमारे पास नबियों का वो कलाम है जो ज्यादा मोतबर ठहरा, हमारे पास रसूलों का लिखा हुआ वो कलाम है जो रूह की हिदायत और तहरीक से लिखा गया। हमें इस किताब मुकद्दस के अलावा कहीं और से यस्सु और अपने ईमान के बारे में सनद नहीं चाहिए। हम इस किताब के अलावा दुनिया की किसी किताब और किसी शख्सियत और किसी गिरोह से सनद नहीं चाहते अपने ईमान की, अपने अकीदे की और यस्सु की जात के बारे में अपने नजरियात की। हमें नहीं चाहिए कहीं से सनद। हम जो मानते हैं उसका इकरार हम करते हैं और उस पर फख्र है हमें, और वो ईमान, वो अकीदा, वो गवाही किताब मुकद्दस के मुताबिक है जो किसी इंसान की ख्वाहिश से नहीं लिखा गया बल्कि खुदा की तरफ से रूह कुद्स की तहरीक से इंसानों ने लिखा, और वो कलाम है जो ज्यादा मोतबर ठहरा। सो हम यीशु मसीह के बारे में बाइबल मुकद्दस के मुताबिक सीखेंगे कि यीशु कौन है, बाइबल क्या बताती है कि यीशु कौन है। एक बड़ी बात जो यीशु मसीह के बारे में है, शुरू में हमने ये देखा कि लोग क्या समझते हैं कि यीशु एक फर्जी ख्याल है, वो कोई हकीकी शख्सियत नहीं, लेकिन बाइबल ये बताती है कि जीसस बिकेम ट्रू परफेक्ट मैन, और उसके लिए उसका नाम बाइबल में द सन ऑफ मैन यूज हुआ है। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह एक हकीकी कामिल इंसान बना, और बाइबल में उसके लिए नाम इब्ने आदम या इब्ने इंसान इस्तेमाल हुआ है। हकीकी इंसान वो बना, कामिल इंसान वो बना, वो कोई फर्जी किरदार नहीं, वो कोई मिथिकल करैक्टर नहीं, वो कोई इल्यूजन या जहनों का वहम नहीं, वो हकीकी शख्सियत है जो हकीकी तौर पर इंसान बना, कामिल परफेक्ट ट्रू हकीकी इंसान बना। और फिर बाइबल हमें यह बताती है कि वो सिर्फ एक आम हस्ती, आम शख्सियत, आम इंसान नहीं, ही इज द ट्रू द परफेक्ट गॉड, द सन ऑफ गॉड, वो हकीकी और कामिल खुदा है। और बाइबल इस बात को जाहिर करती है और बाइबल इस बात की गवाही देती है कि यीशु मसीह खुदा है, यीशु मसीह इंसान बन के इस दुनिया में आया। मैं फिर से अर्ज कर दूं कि हमें अपने अकीदों की तस्दीक किसी और से नहीं चाहिए, किसी और मजहब अकीदे या फिरके या गिरोह या किताब से हमें अपने अकीदे और मजहब की और दीन की और ईमान की तस्दीक नहीं चाहिए। हमारे लिए किताब मुकद्दस काफी है, क्योंकि हमारे नजदीक ये खुदा का जिंदा, मुअस्सर, ला तब्दील और ला खता कलाम है, और हम इसकी रोशनी में खुदावंद यीशु मसीह को जानने की कोशिश करेंगे। उसकी हस्ती, उसकी शख्सियत को हम जानेंगे। सो यीशु मसीह हकीकी इंसान, उसकी जात का वो पहलू कि जब जमीन पर वो उतर के आया, तो पहले हम उस पर बात करेंगे। जीसस अ ट्रू मैन, वो एक इंसान के तौर पर पैदा हुआ पाक कुंवारी मुकद्दसा मरियम से, और उसका खतना भी हुआ। वो ख्याली शख्सियत नहीं, वो कोई वहम नहीं, वो ऐसी हस्ती नहीं कि जो लोगों को सिर्फ दिखता था और हकीकत में नहीं था, बल्कि वो हकीकत में एक इंसान था। और इंसान के तौर पे उसने एक औरत से जन्म लिया और उसका खतना भी हुआ, जो उसके इंसान होने का सबूत है। उसकी परवरिश एक इंसान के तौर पर की गई, एक खानदान में उसे परवरिश दी गई। बाइबल बताती है कि वो कदोकामत में बढ़ता गया। ऐसा नहीं हुआ कि अभी पैदा हुआ और अगले ही लम्हे वो पूरा जवान इंसान था, नहीं। वो आम इंसानों की तरह आहिस्ता आहिस्ता बदन में और पब्लिक में उसकी मकबूलियत में, लोगों में उसकी शोहरत में, इंसानों के तौर पर, आम इंसानों के तौर पर बढ़ता चला गया। लूका के इंजील बयान में लिखा है कि वो मां बाप के ताबे भी रहा, जो कुछ मां बाप उसको हिदायत देते, जो कुछ उसको सिखाते वो सीखता, उनके ताबे रहा। और यहां ये बात बता दूं कि कायनात का खालिक और मालिक और खुदा जब जिस्म लेकर इंसानों के दरमियान आया, तो उसने अपने जमीनी मां बाप के, जिनके सुपुर्द उसे किया गया कि इसको, इसकी परवरिश करो, वो उनके ताबे रहा। जब वो मां बाप के ताबे रहा, तो मुझे और आपको अपने मां बाप के ताबे रहने में क्या तकलीफ है। हमें अपने मां बाप के ताबे रहना है। अगर हम यीशु के पैरोकार हैं, तो हमें अपने मां बाप और बुजुर्गों के ताबे रहना चाहिए। यीशु मां बाप के ताबे रहा और यीशु कदोकामत में खुदा और इंसान की मकबूलियत में बढ़ता गया, तरक्की करता गया, आहिस्ता आहिस्ता वो बड़ा होता गया एक इंसान के तौर पर। और फिर उसे भूख और प्यास भी लगती थी। कई जगह पर लिखा हुआ है उसे भूख लगी, उसे प्यास भी लगी, और उसने अपनी प्यास का इजहार सलीब पर भी किया। मतलब कि उसका जिस्म हकीकी था। अगर वो सिर्फ रूह होता, सिर्फ ख्याल होता, सिर्फ वहम होता, तो उसको तो खाने पीने की जरूरत नहीं होती। रूहों को, ख्याल को, वहम को जरूरत नहीं होती जिस्मानी खुराक की या पानी की। लेकिन यीशु मसीह का जिस्म हकीकी था और उस बदन को भूख भी लगती थी, उसे प्यास भी लगती थी, और वो थक भी जाता था और सो भी जाता था, क्योंकि बहुत सफर करता था। उसके पास सवारी के लिए जानवर नहीं था। उसने यरूशलेम में दाखले के वक्त गधा इस्तेमाल किया, लेकिन उसके अपने पर्सनल यूज में, अपने जाती इस्तेमाल में कोई सवारी के लिए जानवर नहीं था। वो सफर करता, जब गांव गांव, शहर शहर, करिया करिया जाता, तो पैदल सफर करता, और जब झील के पार जाना होता तो फिर कश्ती में बैठकर सफर करता। तो वो भी उसकी अपनी नहीं थी। वो सफर करते करते थक जाता, वो तालीम देते देते थक जाता। कई कई दिन वो सफर करता और तालीम देता रहता तो थक जाता था। और फिर कश्ती में तो उसके सोने का जिक्र मिलता है, जब सोया हुआ था तो तूफान आ गया। खुदावंद यीशु कश्ती में है, तूफान आ गया। अगर आपकी जिंदगी में कभी तूफान आ जाए, प्रॉब्लम आ जाए, परेशानी आ जाए, तो ये मत समझिएगा कि यीशु कहीं चला गया है या यीशु इस काबिल नहीं। यीशु के बीच में मौजूद होते हुए तूफान आएंगे, लेकिन ये याद रखें कि यीशु को पुकारा जब शागिर्दों ने, तो यीशु उठा तो उसने तूफान थमा दिया, डांट दिया, और फिर सुकून हो गया। आपकी जिंदगी में भी अगर कभी तूफान आ जाए, परेशानी और दुख आ जाए, तो घबराइए नहीं, सिर्फ यीशु को बुला लीजिए। ऐ यीशु, तेरी ताकत पर भरोसा है, तो इस तूफान को थमा दे, इसे डांट दे, तो ये आंधी, ये तूफान, ये लहरें खामोश हो जाएंगी। कोई भी किसी भी तरह का तूफान हो, खुदावंद उसे थमा देगा। खुदावंद बदन में जब आया तो हकीकी बदन था, थकता भी था और सो भी जाता था, वो खुश भी होता और खफा भी होता था। जब शागिर्द आते हैं उसे बताते हैं कि तूने जब हमें इख्तियार दिया कि जाओ बदरूहों को निकालो, बीमारों को चंगा करो और सारी मुसीबतों और मुश्किलों से लोगों को आज़ाद करो, मैंने तुम्हें इख्तियार दिया, और जब हमने जाके वो इख्तियार इस्तेमाल किया तो सचमुच हमने मौजज़ात होते देखे, तो यीशु उनकी इस गवाही से खुश होता है, खुशी से भर जाता है, और कहीं कहीं वो खफा भी होता है। जब वो हैकल में देखता है कि लोगों ने खुदा के घर को, इबादत की जगह को, उन्होंने डाकुओं की खो बिजनेस सेंटर बना दिया है, कारोबार की जगह बना दिया है, तो उसे गुस्सा आया, और फिर उसने सफाई भी की हैकल की। यानी यीशु ह्यूमन इमोशंस, इंसानी जज्बात रखता था, वो खुश होता था, वो नाराज होता था, वो गुस्सा भी करता था, और ये ह्यूमन इमोशंस, ये इंसानी जज्बात गुनाह नहीं है। जब यीशु रखता था तो हम भी अगर खुश होने की जगह खुश हो जाएं, कहीं गुस्सा करना हो तो कर लें, नाराज होना हो तो नाराजगी का भी इजहार करना चाहिए, खफगी का इजहार करना चाहिए, जरूर करना चाहिए, क्योंकि यीशु भी करता रहा। दिस इज नॉर्मल ह्यूमन इमोशन, आम इंसानी जज्बात और रवैया है ये। तो यीशु ने ये जाहिर किया कि वो जिस्म रखता है और पूरी तरह से इंसान है वो। वो रोया भी, यरूशलेम को देखकर रोया कि तेरे ऊपर जो गुजरेगी, वो यीशु पहले ही कह रहा है कि तेरे दुश्मन तेरे गिर्द मोर्चा बांधेंगे और कोई पत्थर पर पत्थर बाकी ना रखेंगे, बर्बाद कर देंगे तुझे। यीशु दुख करता है, रोता है यरूशलेम शहर पर, और फिर यीशु रोता है अपने दोस्त लाजर की कब्र पर। तो रोना, कभी ये गुमान और ख्याल किया जाता था, मैं भी ये समझता था कि रोना ये मर्दों वाला काम नहीं है, लेकिन जब यीशु मसीह के बारे में पढ़ा तो फिर एहसास हुआ कि यीशु एक कामिल इंसान होते हुए, वो भी एक मर्द था, उसका खतना किया गया, उसके आंसू जब बहते हैं दुख में रंज में, तो इट्स नॉट अ सिन। ये कोई गलत बात नहीं है, आदमियों का रोना, मर्दों का रोना कोई गलत बात नहीं है, जब आप जज्बात से भर जाते हो खुशी में या दुख में, तो अगर आपके आंसू बहते हैं तो इसका बुरा ना मनाएं, इन्हें बहने दें। यीशु के भी आंसू बहे थे, जीसस वेप्ट, सो इट्स नॉट रॉन्ग टू वीप। यीशु ने रो के बताया कि वो जज्बात रखता है, उसे दुख होता है। और नाइन शहर की जो बेवा थी, उसके बेटे का जनाजा जा रहा था, तो उसे देखकर उसके, यकीनन वो मातम करती होगी, रोती होगी, बैन करती होगी, चिल्लाती होगी, और उससे जब मालूम हुआ कि इसका इकलौता बेटा ही था, कोई उसका सहारा नहीं, तो उसका दिल भर आया, यीशु तरस से भर गया, उसे बहुत तरस आया उस पर, करीब गया, जनाजे को छुआ और उसे जिंदा कर दिया कि तू दुखी ना रहे। यानी यीशु दूसरों का दुख महसूस करता, तरस से भरा हुआ था। वो सब बातों में आजमाया गया तो भी बेगुनाह रहा। यीशु बदन की हालत में हम इंसानों जैसे तजर्बात से गुजरा। खुदावंद यीशु मसीह सब बातों में आजमाया गया, इबलीस ने उसे आजमाया, एक बार नहीं कई बार, कई बार वो आजमाया गया, और ऐसी ऐसी आजमाइशें उस पर आईं तो बहुत मुश्किल हो जाता किसी इंसान का उनसे निकलना। वो सब बातों में हमारी तरह आजमाया गया तो भी बेगुनाह रहा। यीशु मसीह पूरी तरह से इंसानी तौर पर इंसानी जिस्म में होते हुए रूहानी जंग भी लड़ा। इबलीस ने उस पर पूरा जोर लगाया कि इसको हराए, इसको शिकस्त दे, इसे गिराए, जैसे उसने आदम और हव्वा पर जोर लगाया था, तो वो तो गिर गए, आजमाइश में गिर गए, लेकिन यीशु सब बातों में आजमाया गया, बेगुनाह रहा, कोई उस पर जुर्म साबित ना कर सका, कोई उस पर इल्जाम ना लगा सका। जबानी कलामी तो इल्जाम लोग लगा देते हैं जो मर्जी, लेकिन साबित करना असल काम होता है। यीशु ने तो एलानिया कहा था, तुम में से कौन है जो मुझ पर गुनाह साबित करता है। कोई नहीं था जो यीशु पर गुनाह साबित कर सकता। यीशु कामिल इंसान इस तौर पर है कि वो आजमाइशों पर गालिब आया, उसने शरीयत मुकम्मल की, उसने खुदा का हर एक हुक्म पूरे तौर पर पूरा किया, कोई नाफरमानी नहीं की, कोई गुनाह नहीं किया, कोई खता नहीं की, कोई गलत काम नहीं किया, यहां तक कि जुबान से कोई गलत लफ्ज अदा नहीं किया। कलाम में और काम में और ख्यालात में और जज्बात में और एहसासात में, इन वर्ड्स, इन एक्शंस, इन थॉट्स, इन विशेस एंड इन सेंटिमेंट्स, ही नेवर कमिटेड अ सिन, उसने कभी कोई गुनाह ना किया। और वो घायल किया गया, उसका बदन घायल किया गया, उसे मारा गया, उसके बदन को, जो हकीकी बदन था, वो कोई रूह नहीं था, हकीकी बदन था जिस पर कोड़े लगाए गए, जिस पर कांटों का ताज लगाया गया, जिसे मारा गया, जिसकी दाढ़ी नोची गई और जिस पर थूका गया और जिसको सलीब पर गाड़ा गया, कीलों से जड़ा गया और उसकी पसली में भाला भी मारा गया, उसका बदन कोड़ों से छलनी किया गया और उसके कंधे पर भारी सलीब भी उठवाई गई और तरह तरह के जुल्म उस पर किए गए, वो घायल किया गया, उसे मारा गया। रूह को कौन पकड़ सकता और कौन मार सकता, हकीकी बदन था, वो हकीकी इंसान था। वो ना सिर्फ घायल किया गया बल्कि वो मर गया और दफन भी हुआ सलीब पर। जब रोमियो ने चढ़ाया, जिंदगी की हालत में उसे चढ़ाया, जख्मी हालत में चढ़ाया, लेकिन 6 घंटों के कर्ब के बाद उसने जान दे दी। उन्होंने तस्दीक की ये मर गया है। और फिर उसका बदन, रूह को मौत कहां आती है, बदन को मौत आती है। वो इंसानी जिस्म जो कामिल और हकीकी इंसान था, उसे मौत आई। और फिर उस बदन को जिसे मौत आई थी, उसे कपड़े में लपेट कर, खुशबुएं लगाकर कब्र में दफन कर दिया गया। हकीकी बदन था तो उसे खुशबुएं लगाई गई, उसे दफन किया गया, कपड़े में लपेटा गया। वो ख्याल नहीं था, वो वहम नहीं था, वो रूह नहीं था, हकीकी जिस्म में वो जाहिर हुआ और जिस्म के साथ उसने सारे काम किए और दुख सहे थे। और फिर वो दफन हुआ तो दफन रहा नहीं, बल्कि अपने कहने के मुताबिक, अपने कौल के मुताबिक, वो मौत, कब्र, इबलीस, गुनाह, जिस्म और दुनिया पर फतह पाकर जी उठा और बदन के साथ जी उठा जिसे छुआ जा सकता था। उसने खुद कहा, आओ छू कर देखो, रूह में गोश्त और हड्डी नहीं होती, मुझ में है। तोमा आओ, उंगली डालकर तस्दीक कर लो कि मैं ही हूं जो सलीब पर चढ़ा था, जी उठा। हमारा खुदावंद यीशु कोई फर्जी ख्याली कहानी वाला किरदार नहीं है, वो कोई सुपर हीरो स्टोरियों वाला नहीं है, वो कोई वहम और रूह और ख्याल और इल्यूजन या स्पिरिट नहीं था, वो मिथिकल करेक्टर नहीं था, वो एक हकीकी और कामिल इंसान बन के इस दुनिया में आया, जिसने जिंदगी ऐसी गुजारी कि दिखा दिया कि यह है कामिल इंसानियत, यह है खुदा की फरमाबरदारी की जिंदगी, यह है बेऐब और बेगुनाह जिंदगी, यह है वो जिंदगी जो बेऐब है, जिसमें ना दुश्मन गुनाह साबित कर सके, ना अदालतें। वो दुख सह गया इसलिए कि हम छूट जाएं, उसने हमारे गुनाहों की खातर सारा दुख सहा, मर गया और दफन हुआ और जी उठा, वो जिंदा है। यीशु मसीह जिंदा है, वही हस्ती है जो खुद से, अपनी ताकत से, अपने जोर से, अपने जलाल और कुदरत के साथ मौत और कब्र को शिकस्त देकर बाहर आया है। वो जब जिस्म की हालत में था, इंसानी हालत में था, जो उसने मौजजात किए, آج بھی اس کے اندر وہی طاقت اور وہی قدرت موجود ہے۔ سو میرے عزیزو، یسو زندہ ہے، وہ انسان بنا اور ہمارے دکھوں سے واقف ہے۔ اس کا انسان ہونا یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ انسانی دکھوں کو جانتا ہے، انسانی ضرورتوں سے واقف ہے۔ کیا بھلا وہ خدا ہے جس نے جسم لے کر ہمارے جیسے تجربات سے گزر کر ہمیں یہ ایمان اور امید دے دی کہ گھبرانا نہیں، میں دنیا پر، جسم پر، گناہ پر، موت پر، قبر پر اور ابلیس پر فتح پا چکا ہوں۔ سو تمہاری زندگی میں بھی کوئی چیلنجز ہوں، کوئی پرابلمز ہوں، کوئی طوفان ہوں، کوئی دشمن ہوں جو تمہیں موت تک لے جانا چاہیں، تمہیں برباد کرنا چاہیں، گھبرانا نہیں، میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں، کیونکہ میں مر گیا تھا اور زندہ ہوں، اور دیکھ میں عبدالآباد زندہ رہوں گا۔ وہ ایسا خداوند ہے جو ہماری مدد کے لیے موجود ہے۔